आप लोग पुरुष वर्ग आते उनको छोड़ दो, फिर तो आप दिन में कम से कम सुबह जो भोजन होता है, यदि शाम को भी प्राय यहाँ पर व्यापारी वर्ग है और वो शाम तक उनका अंत कर ही लेते हैं वो चले। दूसरी बात हम आपसे कह रहे थे कि वहां पर शिल्पी ने जो कंकरों को अलग कर दिया, सो कंकर बहुत नाराज हुए कि आपने हमें अलग क्यों कर दिया। तो शिल्पी ने जो बात बताई कंकरों को समझ में आई और कंकरों के आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में हमने माटी की संगति तो की, किंतु माटी के जैसा अपना आचरण नहीं बना पाए। तो उन्होंने एक मंत्र की मांग की, ऐसा मंत्र दो जिससे हमारा यह जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बने और खरा बने कंचन सा। तो माटी की मुस्कान ने एक मंत्र दिया था, संयम की राह चलो। सुन रहे हैं आप लोग, एक मंत्र दिया, कौन सा मंत्र? संयम की राह चलो। राही बनना ही तो हीरा बनना है, क्योंकि राही शब्द स्वयं विलोम रूप से कह रहा है राही हीरा। जो संयम की राह चलेगा उसका जीवन हीरे के समान स्वयं बहुमूल्य बनता चला जाएगा। बताओ आप, संयम में ज्यादा आनंद है कि असंयम में ज्यादा आनंद है? अभी आप लोग विधान में खड़े हैं, भोजन में खड़े हैं, कुछ नियम संयम दिया था भैया जी ने, तो संयम का जब आप पालन कर रहे हैं तो संयम में आपको आनंद आ रहा है कि कष्ट हो रहा है? और थोड़ा कष्ट भी हो जाए ना, जैसे अभी महाराज जी ने कल भी हमने भी कहा था, चाय का आपने त्याग किया, चाय का त्याग करने के बाद थोड़ा कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हमारा 2-3 दिन तो बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जिन्होंने त्याग कर दिया बड़ा आनंद आया। ऑपरेशन जब कभी करते ना, फोड़ा हो जाता, बाल तोड़, जानते हैं आप बाल तोड़ फोड़ा हो जाता है, और जब उसको फोड़ा जाता है तो कितना कष्ट होता है, लेकिन जब उसमें से मवाद निकल जाए तो कितना सुकून होता है। ऐसा ही संयम धारण करते समय थोड़ा सा बोले कष्ट जैसा लगता है, किंतु वो कष्ट नहीं, वह तो आपके लिए बहुत अधिक सुख को देने वाला है। वर्तमान परिवेश में आज हम संयम की चर्चा करें, दीक्षा की संयम चर्चा करें, लेकिन इसकी भूमिका कहाँ से परिवर्तित हो रही है? आज हम अपने बच्चों को रात्रि भोजन नहीं करो ऐसा भी नहीं कह पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि जब हमने अपने बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया, वो बच्चा कितने बजे स्कूल जाता है बताओ? कितने बजे स्कूल जाते हैं आपके किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं ना? तुम्हें बताओ भैया कितने बजे स्कूल जाता बेटा? 8 बजे स्कूल जाता है। लौट करके कितने बजे आता है?
1 बजे।
और यदि ज्यादा बड़ी क्लास का होगा तो 2 या 2.5 बजे। अब विचार करो, जो बच्चा 3 बजे 2.5 बजे स्कूल से आएगा, पहला भोजन कितने बजे करता है? वो 3 बजे, क्योंकि जो नाश्ता वगैरह उसने कर भी लिया, लेकिन वो भोजन माना जाता है क्या? सबसे बड़ी विकृति आज हमारे यहाँ पर बन रही है। तो ऐसे शिक्षण संस्थाएं हमारे यहाँ खुल गई हैं जिनका समय बिल्कुल अलग ही हो गया। 8 बजे से 2.5 बजे तक ये कोई समय है क्या स्कूल का? वास्तव में प्रत्येक विद्यालय का समय 10 या 10:30 से 3:30 या 4 बजे तक होना चाहिए, एक आदर्श समय माना जाता है। लेकिन आज ये कॉन्वेंट वाले, कोई स्कूल वाले आपके मानने वाले नहीं, आप तो पहला भोजन 10:30-11 बजे करके फ्री हो जाते हैं, और आपका बच्चा जो स्कूल गया है वो पराठे या कुरकुरे खा के टाइम निकाल रहा है। सबसे बड़े संस्कारों को नष्ट करने में अगर ये कारण बन रहा है, ये स्कूल का समय जो है ना, ये विधिवत प्लानिंग तरीके से ऐसा बच्चों को बनाया जा रहा है कि जो बच्चा 2:30-3 बजे स्कूल से आएगा, 4 बजे 3 बजे भोजन करेगा, अपने आप उसको रात में खाना अनिवार्य हो जाएगा। इसीलिए हमारा कहना, जैन समाज को अगर आज अपनी संस्कृति और संस्कारों को बचाना है तो अच्छे उत्कृष्ट स्तर के विद्यालयों को खोलना पड़ेगा। आज हमारे आपके यहाँ भी 2-2 विद्यालय चलते हैं, लेकिन उसकी दशा ये कि हमारे जैन बच्चे उसमें नहीं जाते होंगे। जाते गए
हम लोग तो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कॉन्वेंट और इस चीज को, आज हमारे पास जगह है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से युग का परिवर्तन हो रहा है, हमने अपने विद्यालयों में वो परिवर्तन नहीं ला पाए। यदि विद्यालय से जुड़े लोग यहाँ पर बैठे हों तो हमारी बात जरूर आप सुनो। और आज CBSE पैटर्न अच्छे से अच्छे आप इतना बढ़िया डेवलप कर सकते हैं। आज दिन विद्यालय तो खुले हैं, लेकिन खेद की बात है वो उतने उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाए जिस उच्च स्तर पर आज जैन समाज अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहती है। इसीलिए इन जो आपने पंचकल्याणक महोत्सव किया, इस महोत्सव से और जो धनराशि आपकी एकत्रित होती है, जिनालयों का निर्माण तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे विद्यालयों का अगर आपने निर्माण नहीं किया तो हम मंदिर तो बड़े बड़े बनवा लेंगे किंतु जैन बच्चों को संस्कार बचाना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। आज जैन संस्कृति की सुरक्षा मंदिरों से अपेक्षा हम विद्यालयों से ज्यादा तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा मंदिर तो 5 मिनट के लिए जाता है और कुछ पुण्यशाली बच्चे जो पाठशाला भी आते हैं, बाकी हर समाज का जैन समाज का बच्चा स्कूल में 7 से 8 घंटे व्यतीत करता है, लेकिन वहां पर क्या संस्कार उस बच्चे को दिए जाते हैं ये आपको शायद मालूम भी नहीं होगा। इसलिए एक संकल्प होना चाहिए, जितने माता पिता यहाँ बैठे हैं अगर हमारी बात सुन रहे हैं, तो अगर बच्चों का भविष्य आपको बचाना है, ऐसे मैनेजमेंट में कभी भी अपने बेटा बेटियों को पढ़ने मत भेजो जहाँ मांसाहारी परिवार के द्वारा, मांसाहारी शिक्षकों के द्वारा बच्चों का मैनेजमेंट किया जाता है, संस्था को संचालित किया जाता। एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया, महाराज आप तो कहते अंडा मांसाहारी होता है और हमारी टीचर हमारे नन कहती अंडा शाकाहारी होता है, हम उनकी बात माने कि आपकी बात माने? वो टीचर जो स्वयं मांसाहारी करने वाले हैं, जो मैनेजमेंट स्वयं अंडा मांस मछली खाने वाले हैं, वो आपके बच्चों को कभी भी शाकाहार की शिक्षा नहीं दे सकेंगे। इसलिए पहला संकल्प करना भी बासोदा में हमने इस बात को कहा था और सारे के सारे उन जैन पर, फिर भी बहुत से जैन परिवारों ने इस बात को सुना और मांसाहारी मैनेजमेंट से अपने बच्चों को निकाल करके उस स्कूल में अपने बच्चों को डालो पहली बार जहां पर शाकाहारी कम से कम मैनेजमेंट हो, जहां पर अंडे को मांस कम से कम शाकाहारी तो घोषित न किया जाता हो। एक बेटी हमारे पास 9वीं क्लास की बेटी आई और हमने उसको कहा तुम्हें नॉन वेज मांसाहार छोड़ना चाहिए, तो कह लगे महाराज हम मांसाहार नहीं छोड़ सकेंगे, जैन परिवार की बच्ची। तो क्या बात है, हमारे स्कूल में हमारे टीचर कहते हैं कि विकट परिस्थिति हो जब आपको 8-10 दिन भोजन ना मिले तो मांसाहार करने में कोई पाप नहीं है। हाँ भोजन है फिर भी आप कहो तो चलो जैनी है मान लो, लेकिन मांसाहार करने जब परिस्थिति बने तो आप मांसाहार कर सकते हैं। और एक चीज और है, जिंदगी मिली है हर चीज का आनंद लेकर के देखना चाहिए, ऐसे हमारे फ्रेंड सर्कल में और शिक्षक ग्रुप में हमें देते हैं। इसलिए एक बार तो हम समझ गए शराब भी पी करके, हमने कहा शराब का, बोले शराब का त्याग नहीं करेंगे कभी पीना पड़ा तो। देखो ये आपके परिवारों के हमारे परिवार के बस, फिर हमने उसको समझाया बेटा देखो फिर एक काम करना जहर भी, जब सब कुछ एक बार करके देखना ही है तो जहर भी पी के नहीं, जब जहर पीने के मिशा में आप नहीं कर सकते हो शराब भी नहीं पीना और मांस जो है कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए मरना पसंद कर लेना किंतु कभी भी मांस भक्षण नहीं करना, ये हमारी जैन संस्कृति है। तब कहीं जाके उस बच्ची ने इसका संकल्प लिया, कारण यही था जिस बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां का जो मैनेजमेंट जो प्रमुख शिक्षक थे वो स्वयं सुअर का मांस खाते थे, वो स्वयं अंडा मांस मछली खाते थे, तो आपके बच्चों को कैसे संस्कार देंगे? दीक्षा तो बहुत दूर की बात है, आज बेसिक संस्कार जब हमारे नष्ट होते चले जाएंगे तो हम कैसे बचा पाएंगे? कल आपने देखा था कि प्रतिदिन देव दर्शन करना, अब जो बच्चा आपका सुबह 7-8 बजे देव दर्शन करने मंदिर स्कूल चला जाता है देव दर्शन भी वो नहीं कर पाता। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो विद्यालय का एक ही ऑप्शन हमारे सामने बसता है, उस मैनेजमेंट को ना आप बदल पाएंगे ना कोई मान पाएगा, लेकिन हम अपने अच्छे अगर स्कूल एक खोलते हैं और उसमें 10:30 से 4 का समय स्कूल का होना चाहिए,
और इसके बाद जो है शाकाहारी शिक्षकों के द्वारा संस्कार दिए जाए। आज परीक्षण पर्व आदि आते हैं, इन पर्वों में भी एग्जाम आदि ऐसे आयोजित किए जाते हैं कि बच्चे धर्म लाभ से पूर्णतः दूर हो जाए, जानबूझ करके ऐसा किया जाता है। अभी हमारा गुना में जब प्रतिकल्याणक महामहोत्सव चल रहा था, उस समय 12th क्लास के 10th क्लास के प्री बोर्ड जो एग्जाम थे, स्पष्ट उनके पुस्तक में लिखा था 7 फरवरी के बाद थे और 26 जनवरी से 1 फरवरी तक पंच कल्याणक महोत्सव था। और जैसे उनको पता चला क्या विपरीत मानसिकता, तो उन्होंने पेपर को प्री और आगे बढ़ा लिया, 26 जनवरी से 1 फरवरी तक उन बच्चों की परीक्षा रखी। 40 चयन बच्चे जो थे और उस 10th क्लास में पढ़ते थे, और वो आके महाराज 24 तारीख को कहने, महाराज आज ही हमें ये घोषित किया गया कि कल से आपकी परीक्षा और आपको परीक्षा में आना पड़ेगा, हम लोग क्या करें। तुरंत एप्लीकेशन बनाई, सब कुछ पहुंचाया, लेकिन उन्होंने नहीं, हम इस टाइम टेबल में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर सारे बच्चे हमारे पास आए, हमने कहा अब बताओ, अब तुम्हारी आस्था की परीक्षा है, यदि ये प्रिय आपका क्या कहते हैं ना प्री टेस्ट वगैरह था प्री बोर्ड, हमने कहा ये अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो इसको आपको क्या परिणाम निकलेगा वार्षिक परीक्षा। बोले महाराज कुछ नहीं निकलने वाला, फेल तो नहीं होंगे ना, नहीं होंगे, चलो संकल्प करो। 40 बच्चों को एक साथ संकल्प कराया कि कोई भी परीक्षा देने नहीं जाएगा, और सारे बच्चों ने उसने संकल्प किया हम प्री बोर्ड परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि जानबूझ करके उसी समय परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिस समय आपके विशेष का। मेरे गुना जिले में इस बात की खबर वर्ष महीनों पहले से थी कि इनका परीक्षा ये पंच कल्याणक महोत्सव होने वाले हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट जो कि आपकी संस्कृति और संस्कारों को नष्ट करने का उद्देश्य बना के चल रहा है, ये जब 40 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी और ये बहुत अच्छा उन्होंने किया, लेकिन आज हमारे पेरेंट्स के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर के वहां कह सके। आज क्यों एजुकेशन का क्या दुष्परिणाम बन निकल रहा है, आज एक सीट पर बेटा और बेटी को बैठा देते हैं। आप कभी जाके घर में पूछना अपने बेटा बेटियों से कि तुम्हारी बैठक व्यवस्था स्कूल में क्या है। आज जो बच्चा दूसरी और तीसरी क्लास पढ़ता है, जब उसके साथ में एक बेटा बेटी ऐसा वो बैठा देते हैं, तो निश्चित मानना आज के बच्चे छोटे नहीं है। जो बात हमें 10वीं तक नहीं पता था वो आज तीसरी और चौथी का बच्चा जानता है। इंटरनेट मोबाइल का जमाना है, हम 10वीं तक यही समझते थे कि अस्पताल में डब्बा होता है उसमें से जाकर के बच्चे को लेकर के आते हैं, लेकिन आज बच्चे सब जानते हैं मम्मी पापा क्या होते क्या ये प्रक्रिया, ये सारी की चीजें इतनी ज्यादा विकसित हो गई है। और इसका परिणाम ये निकल रहा है कि कोई एजुकेशन में जो साथ में बच्चे कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि बेटा बेटी साथ में ना बैठे। आप आज जाके अपने बेटा भी जो अशोक नगर में हमारा प्रवचन हुआ और हमने ये बात कही, तो जो माइक संचालन कर रहे थे उनको भी ये, उन्हें घर जाके अपने बेटी से पूछा तो उन्होंने बताया हाँ पापा इधर वॉइस और बीच में मुझे बैठा लेते। तब उनको लगा कि हमने कभी स्कूल में बच्चे को जाना है किंतु ये तक नहीं पूछा कि क्या बैठक व्यवस्था है। और जब बेटा बेटी एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, और धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती चली जाती है उनके मन में जो विकार भाव पैदा होते हैं, उसका अनुभव ये हो रहा है कि आज 12, 13, 14 साल में बच्चियां मातृत्व को प्राप्त यानी कि इस प्रकार से गर्भ धारण कर लेती। ये सारी की सारी विकृतियां बच्चों में नहीं है, हमने बच्चों को पैसा दिया, सुविधा दिया, सब कुछ दिया और बड़ी बड़ी धर्म की बातें हमने करा दी, कि स्कूल में आपने जहां बच्चे को भेजा, बच्चा तो बच्चा होता है, उसका अपना विवेक की आंख नहीं होती, कि तुम्हारे पास तो विवेक की आंख है। जब आप बच्चा वहां बैठता है धीरे धीरे परिणामों विकृति आती है और आगे जाकर के वो लड़के लड़की जब फ्रेंड बनते हैं। ध्यान रखो एक बात और सुनो हमारी बात, जिस दिन तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी बेटी के कोई लड़के का फोन आ रहा है कि मम्मी ये तो मेरा फ्रेंड है, या तुम्हारे लड़के को कोई लड़की फोन कर रही है और तुम बहुत बढ़िया प्रेम से बुलाते हो, दोनों को नाश्ता भी कराते हो और गर्व से कहते महाराज ये हमारी बिटिया का फ्रेंड है, ये हमारे बेटी की फ्रेंड है, ये एक ऐसा शब्द चल गया इसमें सब रिश्ते एंड हो गए। पहले लड़कियों की लड़कियां सहेली होती से सहेली कहते थे, लड़कों के लड़के जो मित्र जो दोस्त कहते थे, अब ये बीच में फ्रेंड आ गया। बालकीड़ा में बता रहे थे ना भैया जी कि बालकीड़ा में महावीर भगवान के बच्चे हो आदिनाथ के साथ लड़के ही खेलेंगे, कोई लड़कियां नहीं खेलेंगे, किंतु आज लड़के लड़कियां साथ में खेल खेल रहे। यही जो सारी विकृतियां पैदा हो रही है, और वहां पर जब वो लड़के लड़की फ्रेंड बनते हैं, निश्चित मानना है आगे जाके कुशील पाप का कारण बनेगा। इसीलिए प्रथम अवस्था में आप शुरुआत करो, जैसे आपने बेटा बेटी के स्कूल भेजा, किसको मित्र बनाया ये बता दो। बेटे को कहो यदि तुझे मित्र बनाना है लड़कों को बना, लड़कियों को कहा तुझे मित्र बनाना है लड़कियों को बना, क्योंकि जब कभी लड़के लड़के मित्र बनते हैं वो भाई बहन नहीं होते, ध्यान रखना। सदर नहीं सुन रहे, भाई बहन बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, किंतु स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़के कभी भी भाई बहन नहीं हो सकते। भाई बहन का प्रेम निश्चल होता है, किंतु लड़के लड़कियों का प्रेम निश्चल नहीं, वो वासना होती है। भले आप हेल्थी फ्रेंडशिप, एक बच्चे ने हमें पूछा महाराज हेल्थी फ्रेंडशिप करने में क्या बाधा, हेल्थी फ्रेंडशिप हम समझे नहीं क्या होता अंग्रेजी उसके जा, फिर बाद में जो स्वस्थ मित्रता, लेकिन लड़के लड़कियों की मित्रता कभी स्वस्थ नहीं हो सकती। वो लड़के लड़के जब कभी मित्र बनेंगे उनके मन में कहीं ना कहीं पाप छुपा होता है, ये सत्य को हर बच्चा स्वीकार रहा है। हमने तो कई बच्चों से मिले जो हमें उन्हें मोबाइल जब दिखाते लड़के लड़कियों की फोटो, आप फ्रेंडशिप देख लो, बर्थडे पार्टी जब मनाते वहां जाके आप उनका उठना बैठना देख लो। बच्चों की जन्मदिन पार्टी घर में मनाओ, कभी होटल में मत भेजो। आज जब लड़के लड़कियां जो मित्र बन रहे हैं, कैसी पार्टियां कर रहे हैं, आप जाकर के आप उनका फेसबुक खोल करके देख नहीं सकते। इस तरह से मित्रता हो रही, इसका कारण बच्चे नहीं है, हमने उनको इस तरह से शिक्षा देना शुरू कर दिया। कोई एजुकेशन से बच्चों को बचा करके रखो, लेकिन नहीं बचा पाओगे, क्योंकि पूरे के पूरे स्कूल भूल चल रहे हैं। 99% आज अभी 10 स्कूल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। भोपाल में हम जब थे तो एक स्कूल मिलता था, लोग हमारे पास महाराज, क्योंकि उसमें मनीष जैन एक सर थे कर्ष स्कूल में प्रिंसिपल, महाराज हमारी बेटी का एडमिशन कराना है, आप थोड़ी सी कर दे वो लगा दो, कितना सोर्स लगा दो। एक अंकल जी थे, उन्होंने पांचवी क्लास में जब बेटी की बिगड़ती मानसिकता को देखा, पांचवी क्लास की बेटी, 2500 लड़के उसके दोस्त बने, फोन आने लगा, पिता घबरा गया, हमारे पास आए, और बाद में उन्होंने चर्चा की, महाराज एक दूसरे गर्ल्स स्कूल में उसका एडमिशन कराया, 1,00,000 रुपए डोनेशन देना पड़ा। उस पिता ने संकल्प लिया, मुझे अपने बच्चों को मैं स्कूल स्वयं खोलूंगा, और उसने स्कूल खोला, और उतना नहीं बढ़ा, लेकिन भाव ये है कि आज हमें बच्चों को बचाना हो, इस परिस्थिति से बचाना पड़ेगा। इसीलिए आज दीक्षा कल्याण का पर्व है, और वास्तव में हम सब यदि थोड़े से प्रारंभिक भूमिका में, क्योंकि जब कहना चाहिए जब पेड़ बड़ा हो गया उसके बाद आप नहीं कर सकते, माटी जब घट बन गई तब नहीं, लेकिन जब माटी मुलायम होती है तब हम चाहे तो उसको घट भी बना सकते हैं, चाहे तो सुराही का भी रूप दे सकते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपका थोड़ा सा प्रमाद, आज बच्चों को रात में भोजन करना पड़ रहा है। कितने बच्चे पाठशाला में आते बताओ, यहाँ बबीना के कौन कौन है, कितने नन्नाड़े बबीना के, या उनके बच्चे यहाँ रोज पाठशाला जाते हैं क्या? बहुत अच्छा, जिनके बच्चे पाठशाला नहीं जा रहे समझ जाओ वो माता पिता बच्चों के शत्रु हैं। अरे इतने बढ़िया है, यहाँ पढ़ाने वाले दीदियां, आपको जो लोग तरसते हैं पढ़ाने वाला मिल जाए, और निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाते हैं, उसके बाद पूजन होती है, नाश्ता होता है, सारे की सारी यदि पाठशाला में कोई व्यवस्था में कमी हो और अपन व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन आप बच्चों को 3 किलोमीटर या यहाँ से हमारे यहाँ झांसी भी कुछ बच्चे जाते होंगे 20-22 किलोमीटर झांसी बच्चों को पढ़ने भेज सकते हैं, किंतु 10 कदम पे जो घर में पाठशाला खुल रही है वहां बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते। जब हम लोग आए तो उस समय पाठशाला खुली थी, और उस समय जो बच्चे पाठशाला पढ़े आज भी जब वो हमें मिले बड़े गर्व से सीना तान के कहते हम पाठशाला पढ़े हुए हैं, और हमने पाठशाला में वो संस्कार मिले हैं कि आज इंदौर भोपाल दिदि कहीं पर भी हम पढ़ने गए किंतु आज हमारे कुछ शाकाहारी भोजन करना है, मांस भक्षण नहीं करना, पूजन के जो संस्कार दिलीन भी के अभिषेक का कलश जिस बच्चे ने पकड़ लिया उसके हाथ में कभी भी शराब की बोतल आने वाली। आज हम पाठशालाओं का महत्व नहीं समझ रहे, यदि 150 घर की यहाँ पर समाज है तो कम से कम पाठशाला में 300 बच्चे एक घर में, 2 तो सरकारी रेट से है भैया, 2x2x2 का, तो कम से कम 300 बच्चे होना चाहिए। फिर भी आज बच्चों की संख्या यहाँ तो फिर भी अच्छी है, और आप लोग पाठशाला के विषय में जागरूक हो और संयम की राह स्वयं अंगीकार करें। जितने आप संयम को अंगीकार करेंगे उतने आने वाली पीढ़ी में संयम के संस्कार होंगे। आप लोग यहाँ पर अभी तो बहुत आनंद के साथ पंड कल्याणक मना ही रहे हैं, और जो यहाँ पर बैठे हुए शावक का प्रथम कर्तव्य होता है देव पूजा, बाद में काम दूजा। तो बुजुर्ग लोग तो बहुत सारे लोग पूजन करते हैं, जो लोग पूजन नहीं करते हैं यदि इन 5 दिनों में उन्होंने वास्तव में जिन भगवान की भक्ति का आनंद लिया है, अब संकल्प कर लेना कि जब भगवान बन जाएंगे, जब अभी भगवान नहीं बने हैं तब आप इतने आनंद से पूजन कर रहे हैं, तो भगवान बनने के बाद 24 ऊपर विराजमान हो गए और नीचे बड़े बड़े भगवान हो गए, पूजन कौन करेगा। नए लोगों को पूजन करने के लिए और आगे आना है, पुराने जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, किंतु प्रत्येक घर में जो पुरुष वर्ग है, और महाराज कहते हैं सुधा सावरी वो जो अभिषेक पूजन करने की क्षमता रखता उसके बाद भी अगर अभिषेक पूजन नहीं करता तो ऐसे कर्म का उसको बंद होता है कि भाव भाव में उसको कभी जैन को मिलने वाला नहीं है। यदि आज तुमने जैन कुल में जन्म लिया है, तुम्हारे अंगों पांग अच्छे, कहीं में कुष्ठ रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लंगड़े लूले नहीं हो, तो आज संकल्प कर लेना कि इतना मेरा पुण्य का उदय कि मुझे सब कुछ मिला है कि मैं जिनेन भगवान का अभिषेक अपने हाथों से कर सकता हूँ, तो प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने का संकल्प करना ही होगा। कितने लोग यहाँ पर पुरुष वर्ग बैठे हैं जो प्रतिदिन अभिषेक पूजन नहीं करते, हाथ उठाओ, प्रतिदिन अभिषेक पूजन नहीं करते, जल्दी हाथ उठाओ भैया, इधर से, बाकी सब करते हैं, ये इधर पीछे सब लोग करते हैं, जो नहीं करते वहां तो था जल्दी से, बहुत कम लोग हैं, इधर कौन कौन अभिषेक पूजन नहीं करते, हाँ वो तो सोधन ये भगवान राजा यथा राजा तथा प्रजा, कोई बात नहीं, अब संकल्प हो गया, आज से संकल्प है कि यदि हमारे अंगों, देखो लोग रोते हैं हमारे पास, कई लोग आते हैं महाराज हम अभिषेक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कुष्ठ रोग हो गया, ऐसे हाथ पैर नहीं, हाथ टूटे पैर टूटे, या ऐसी बीमारी जिनको हो गई कि भगवान को नहीं छू सकते, कई लोगों को ऐसी बीमारी होती है हाथों से पसीना आता है, हाथ से चपड़ी निकलती है, वो भगवान को छू नहीं सकते, तुम लोग कितने सौभाग्य भाग्यशाली हो कि आज तुम्हें अच्छे हाथ मिले हैं, बढ़िया सुंदर शरीर मिला है, तो संकल्प करना जिनेन भगवान का अभिषेक पूजन हम प्रतिदिन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि रात्रि भोजन भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आप रात्रि भोजन करते हैं, समझ लेना बहुत बड़ी जिन शासन की अपभावना आप करते हैं, क्योंकि इधर पंचकल्याणा महोत्सव ना के हम जिन शासन की प्रभाव ना कर रहे हैं, कि जब शादी में आप जाते हैं और आपके यहाँ पर लिखा हुआ था होता है शाम को 5 बजे से आपके ये कार्ड में जैसा जो भी जैन व्यक्ति लिखता है, सबसे बड़ा ये जैन धर्म का अप्रभावक है। भले लाखों की बोली ले लिया है उसने, लेकिन अगर अपने बच्चे की शादी के कार्ड में लिखता है कि 5 बजे से आपके आगमन तक, और यदि उसके यहाँ पर रात्रि भोजन होता है, तो जितना पुण्य उसने पंच कल्याण करके ने कमाया उसे कई गुना पाप उसको वह रात्रि भोजन का लगेगा। इसलिए आप तो नियम ले कि हम कभी रात्रि में भोजन करने किसी शादी पार्टी में जाके और नहीं करना। लोग कहते महाराज घर में कमी खाते बाहर की छूट है, घर में खाओगे तो 10% पाप है और बाहर जाके खाओगे तो 90% पाप का बंद आप करते हैं, क्योंकि घर में तो परिवार जन देखते हैं, परिस्थिति होती है, किंतु बाहर आप लोगों को जो 4 लोग देखते हैं और अपभावना का कारण बनता है, इसलिए बाहर कभी भी जाकर के रात्रि भोजन नहीं करो। बढ़िया बच्चे, यही हमारा कहना, सौदन में यदि बड़े बड़े महापाश सब बैठे, अब अगला संकल्प आप ये करना, हमारे जिस तरह से आपने सुदामा की कुटिया को एक महल का रूप प्रदान कर दिया, पुराने मंदिर को एक नया रूप प्रदान कर दिया, अब अगला चरण है कि इस विद्यालय को आपको नया रूप प्रदान करना है। भले बाहर कोई जमीन लो और 2-3 एकड़ जमीन में एक बहुत अच्छा विशाल स्तरीय और एक वह विद्यालय खोले जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को संस्कार बचा पाए, तो हमारा यह पंच कल्याण महोत्सव बनाना सार्थक हो जाएगा। वास्तव में दीक्षा कल्याणक प्रभु ने संयम को अंगीकार किया और भी भगवान बन गए, हम भी अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा संयम अंगीकार करें। एक व्रत तो महिलाओं को दे दिया हमने, परिवार सुरक्षा व्रत, भोजन नहीं लिया सबने, कोई नहीं लोगे, हमें पता सुनोगे सब, लेकिन नहीं, फिर भी बहुत से लोगों ने लिया है, अच्छा है, करके देखना, अच्छा लगे तो आपको है, और नहीं तो हमें प्रवचन करना था, आपको धर्म उपदेश दिया। और एक नियम आज सबको हम देते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज लोग ज्यादा मीठे हो रहे हैं, अर्थात शुगर डायबिटीज सब बहुत से लोगों को हो रही है, डॉक्टर भी परेशान है, घर वाले परेशान। एक नियम आज सब लोगों को लेना है एक साल तक के लिए, कि हर मंगलवार के मंगलवार मीठा नहीं खाएंगे, शक्कर और गुड़ का त्याग। एक दिन चल जाएगा, सप्ताह में एक दिन, जितने इंद्रमार अभी जो चलेगा उनको ही बता देना, सौगर में सप्ताह में एक दिन मिठाई का त्याग, मीठा नहीं खाना, बुरा का एक ध्यान मंगलवार के मंगलवार त्याग रहेगा, एक साल तक का नियम है। भूल जाओ तो दूसरे दिन कर लेना, किंतु सात दिन में एक दिन मीठा जरूर छोड़ना है, आज दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में यही सब संकल्पित होकर के अपने संस्कारों को जीवित रखेंगे। इसी मंगल भाव रखना, बोलिए भगवान महावीर होने की।